सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् उन्नीस तारीख से भागवत है और लगभग 12:30 बजे से है। तो शुरू में तो ये सेठ जी की बात कह देंगे, जेठ सुधी दूज राज है, सावन सुधी दूज, संवत 1995 77 वर्ष हो गए। प्रेम और श्रद्धा करने योग्य तो परमेश्वर ही है। जो स्वार्थ रहित सब भूतों में प्रेम है वो परमेश्वर में ही प्रेम है। प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, नहीं प्रेम से भगवान बिक सकते हैं। प्रेम ऐसी चीज है कि जिसको जितनी ऊपर दो उतना ही दे सकते हैं। भगवान तो श्रद्धा के लायक हैं ही, तो महात्मा पुरुष भी तो श्रद्धा के लायक होते हैं। श्रद्धा तो दोनों में ही हो सकती है, परंतु करोड़ों में कोई महात्मा पुरुष होता है। महात्मा की जितनी कमी है परमात्मा की कमी नहीं है। महात्मा पुरुष अपने आप को कभी महात्मा मानता ही नहीं, ढंडोरा नहीं पीटते कि मैं महात्मा हूं मैं महात्मा हूं। ढंडोरा पीटेगा वो महात्मा होगा नहीं, महात्मा होगा वो अपने को कहेगा नहीं। इसमें हमारे जैसे साधारण पुरुष की मुश्किल हो जाती है, महात्मा को कैसे पहचाने। आओ कोई उपाय बताओ जिससे हम उनको पहचान सकें। सबको खूब ख्याल करना चाहिए। दो बात सबसे बड़ी होती है कि महात्मा में अपने आप को किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं रहता है। महात्मा में अपने आप का, ये लिखा है, अपने आप का किंचन मात्र भी स्वार्थ नहीं रहता है। महात्मा पुरुष होते हैं जो कर्म न्याय संगत होता है उसको कर लेते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि सारे संसार के सामने आदर्श रहे, उस कर्म करने का न्याय सुरक्षित रहे। उससे बढ़कर कोई नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आदर्श तो सभी से ही बड़ा है। कोई सोचे कि मुझे अपने आचरण सुधारना है तो मैं किसको सामने रखूं, तो रामचंद्र जी को आदर्श रख करके अपना आचरण सुधारो। महात्मा से अभिप्राय यह है कि जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो, चाहे वो किसी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, कोई लेना देना नहीं। भगवान की शरण लेने से भगवान उसे अपना लेते हैं, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई भी हो, भगवान को संकोच नहीं होता है। गार्गी बाल ब्रह्मचारिणी थी, तभी तो वो बड़ी शक्ति वाली थी, बड़ी उच्च श्रेणी की थी। बहुत सी स्त्रियां जैसे द्रौपदी है, सावित्री है, पार्वती है, सीता है, इत्यादि देवियों ने स्वप्न में भी किसी दूसरे का चिंतन नहीं किया। आप रामायण में जानते हो, अनसूया बड़ी पतिव्रता धर्म वाली थी। अनसूया के प्रताप से ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने छोटे छोटे बच्चे बन गए। परमात्मा की तरफ चलने में अथवा महात्मा बनने में कोई रुकावट नहीं है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ऊंचे वर्ण का हो, चाहे नीचे वर्ण का हो, ये रास्ता सबके लिए एक समान खुला हुआ है। महात्मा के किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं रहता, केवल शरीर का निर्वाह करते हैं। जिसके कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं, कामना नहीं, कुछ नहीं, जिसने संपूर्ण परिग्रहों को त्याग दिया है, केवल शरीर का निर्वाह हो जाए, इतनी प्रवृत्ति रखता है, आप विचार करो, ऐसे पुरुष से कभी पाप बन सकता है? ऐसी महिमा महात्माओं की है, उनका प्रभाव बड़ा अद्भुत है। जिनका प्रभाव जितना बनता है, मनुष्य जितना प्रभाव मानता है, वह उतना ही है। केवल मनुष्य के शरीर में ही पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। जैसे हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ता हुआ देखते हैं, परंतु उसको बनाने का प्रयत्न तो कभी करते ही नहीं। हवाई जहाज में उड़ते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, यात्रा करते हैं, परंतु उसको बनाने का प्रयत्न करते हैं, दिमाग में नहीं आते, बना ही नहीं सकते। इसी तरह महात्मा पुरुषों से मिलना होता है। महात्मा बने बनाए हमको मिलते हैं, परंतु हम अपने को महात्मा नहीं बनाते। यदि बनाने का परिश्रम करते तो बन सकते हैं, पर महात्मा मिल गए इतने में ही संतोष कर लेते हैं। बनना ही नहीं चाहते तो कैसे बनोगे? भगवान ने हमको मानव शरीर दे दिया, फिर चाहे अपना कल्याण करो न करो, भगवान ने स्वतंत्रता दी है। विश्वास न होने के कारण से हमारा कल्याण नहीं होता। भगवान ने मनुष्य के लिए कल्याण की जो बातें बताई हैं, उसमें 8 विशेषण दिया है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम कर्तुम सुसुखम और अव्ययम। आठ विशेषण दिए हैं। जो कर्तुम सुसुखम कहा है, करने में बहुत सुगम है, फिर भी चेतते नहीं है। इसलिए हम कहते हैं सबको खूब जप और ध्यान करना चाहिए। आप खूब जप और ध्यान करो, उसका स्वरूप बताते हैं। जैसे आज जप और ध्यान किया तो कल और ज्यादा करें, तो कल जब हो तो कहें कल से आज ज्यादा करेंगे, और फिर के कल से आज ज्यादा करेंगे, आज ज्यादा करेंगे। ऐसे लोग बढ़ा हुआ। एक व्यापारी सुबह दुकान खोलता है, मन में सोचता है इतना रुपया आज मिल जाए तो ठीक है, और उसके भाग्य में लिखा हुआ होता है तो उस दिन उसकी दुकान खोलते ही कमाई हो जाती है। परंतु सारे दिन दुकान पर बैठा रहता है, क्योंकि उसके अंदर लोभ है, उसके अंदर तो कभी घाटा भी लग सकता है, परंतु इधर घाटे का नाम ही नहीं है। लोभ लगाओ, इधर लगाओ। जिस लोभ से हमारा पतन होता है, जिस लोभ से हमको नरक मिलता है, काम है क्रोध है तथा लोभ है तस्मात एतत् त्रयम् त्यजेत्, उस लोभ को भगवान की तरफ लगाओ। नहीं तो संसार में लगाओगे तो नरक मिलेगा, भगवान में लगाओगे तो भगवान मिलेंगे। भगवान का जो उपदेश है, और यदि मनुष्य उसी तरह काम करता है तो उसको प्रत्यक्ष फल मिलता है, इसका कभी नाश नहीं होता। प्रत्यक्षावगमम, इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति कोई कठिन बात नहीं है। भगवान कहते हैं मन मना भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। भगवान में यदि मन लग गया तो फिर मन भोगों की तरफ झांकता ही नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से जो पत्र पुष्प फल जल भी देता है तो भगवान प्रत्यक्ष होकर उसका दिया खा लेते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं। और भगवान कहते हैं अर्जुन तू मेरा भक्त हो जा, तू मेरे में प्रेम कर। परमेश्वर में जो प्रेम करना है कठिन बात नहीं है। हां, राजा महाराजा से प्रेम करना बहुत कठिन है, क्योंकि राजा सदा अपने स्वभाव के अनुकूल दूसरों को देखना चाहता है, और भगवान हमारे स्वभाव से ही हमको मिल सकते हैं। परंतु उनमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास होते ही स्वभाव बदल जाता है। प्रेम से यदि राजा मिल भी ले तो राजा के अंदर दयालुता लागू नहीं पड़ती। भगवान तो एक क्षण में सबसे मिल सकते हैं, भगवान के दरबार में कोई अटकाव नहीं है। भगवान तो स्वयं चाहते हैं कोई मेरे से मिले, किंतु ये कानून साथ में रखते हैं, वे कानून है प्रेम। इतना यदि कानून नहीं रखते तो हमारा पतन हो जाता है, क्योंकि हम भगवान में रहते हुए भी भगवान को जानते नहीं। बिना साधना के मिले हुए भगवान का ज्ञान नहीं होता, उनमें प्रेम नहीं होता। भगवान में प्रेम होना कठिन नहीं है। मैं जो आपको ये सरलता की बात बोलता हूं, यह कोई मेरे घर की बात नहीं है। जितनी बात कहता हूं सब शास्त्रों की बात है। देखो, दो बार से कभी ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। रोज के जिमो 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 कबीर जी, अमको भाई खूब जिमो। दो बार से कभी भोजन नहीं करना चाहिए, तीन बार भगवान का ध्यान करना चाहिए, गंगा के किनारे टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, उनको यदि नहीं किया तो फिर कल्याण कैसे होगा। हाँ, इतना है, जितना तुम अपने घर में पुण्य करते हो उससे तो यहां अधिक है। इतना तो करते हो, कर्णवास आए हो, गंगा के किनारे आए हो, गीता भवन आते हो, इतना तो ठीक है, सत्संग करते हो। परंतु जैसे साधारण आदमी को रोटी कपड़ा मकान मिलता है, उतने में वो संतोष नहीं करता है और कमाता है। वहां तो संतोष करना चाहिए, यहां थोड़े में ही संतोष करके रह जाते हैं। क्यों संतोष को दूषित करो? जिसका किसी में भी रत्ती मात्र भी स्वार्थ न हो, ऐसे जो लक्षण होते हैं, उन महात्माओं के पास जाकर उनसे सीखना चाहिए, जीवन सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, उनकी आज्ञा का पालन है, ये सेवा से कम नहीं। केवल शरीर को स्नान करा दें यही सेवा है, ये नहीं। उनकी आज्ञा का पालन करो। जैसे थोड़ी देर समझ लो, कोई पंखा लेकर मेरे हवा करे तो के मन में सोचता है कि मैं सेवा करता हूं। मेरे मन में तो ये रहे कि ये अलग से हवा न होवे, और तुम सोचो कि हम सेवा करते हैं लाभ होगा। ये लाभ की बात नहीं है, आज्ञा पालन करने में लाभ है। महात्मा को हमारे बर्ताव से संतोष होवे तब उसको कल्याण होवे। भगवान की खुशी भक्त की खुशी में है। गुरु और शिष्य का प्रगाढ़ भाव हो तो गुरु की एक आज्ञा के पालन मात्र से शिष्य का तत्काल उद्धार हो सकता है। भगवान में मित्र भाव रहे तो थोड़ा समय लगता है। अर्जुन को भगवान ने कहा, यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने अपने को भगवान का शिष्य मान लिया। यदि मैं महात्मा हूं और मेरा गुरु शिष्य का भाव है, फिर यदि वो आज्ञा का पालन न करे तो नष्ट हो जाता है। यदि मित्र भाव से भी आज्ञा का पालन न करे तो वो भी नष्ट हो सकता है। गुरु की आज्ञा का पालन न करे तो उसका पतन हो जाता है, उसकी आज्ञा का पालन करे तो लाभ ही लाभ है। गंगा में स्नान करने से जो लाभ है, खूब लाभ है, परंतु गंगा में स्नान भी करता है और गंगा के किनारे गंदगी करता है तो हानि बहुत ज्यादा होगी। मित्र यदि मित्र की बात न माने तो नहीं माने, न पाप होता है न कुछ और होता है। हां, बस इतना होता है कि मित्रता में कमी आ जाती है। इसलिए समय परिस्थिति को देखकर ठीक हिसाब से चलना चाहिए। स्त्रियों को, पुत्रों को, सबको ख्याल करना चाहिए कि परिवार के संबंध में किसी प्रकार का स्वार्थ हो तो वो प्रेम चलने वाला नहीं है। जिसमें बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता है वही कुटुंब का व्यवहार पवित्र होता है, जिससे कल्याण होता है। जिसके स्वार्थ, जिसके स्पर्श भाषण से हमारे यदि पापों का नाश होता हो तो समझना चाहिए वो महात्मा पुरुष है। जिससे शांति मिलती हो, समता का भाव होता हो, धीरता आती हो तो समझना चाहिए महात्मा पुरुष है। ये सामान्य बात। अपने को तो लाभ लेना है। केवल महात्मा है, महात्मा है, महात्मा है, ऊंचे हैं, बड़े हैं, इतने से क्या लाभ है? स्वभाव को बदलो, महात्माओं के लक्षण अपने में लाओ, स्वार्थ का त्याग करो और उनके संग से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते रहो। तब तो महात्मा की बात का प्रभाव पड़ेगा। ये तो महात्मा है, ये महात्मा है, बहुत ऊंचे, कोई फायदा नहीं। लालटेन घर में रखी है और तेल भी है पर जगाया नहीं और यहां लावे नहीं तो क्या काम किए? अगर हमारे घर में लालटेन है, हमारे घर में घास लेट है, हमारे यहां ऐसा है, क्या फायदा? लालटेन है तो उसका प्रकाश करो, उस प्रकाश का लाभ लो। इसी प्रकार महात्मा के पास उनके गुण देओ, उनका संग करो, अपने स्वभाव को उनके अनुसार ठीक बनाओ। जिस प्रकार भगवान राम की प्रत्येक क्रिया का असर राक्षसों पर पड़ता था, युधिष्ठिर की प्रत्येक क्रिया का असर शत्रु पर भी पड़ता था। याद करो जब राज्यसभा में द्रौपदी के केशों को खींचा जा रहा था, तब युधिष्ठिर में कितना धैर्य, कितनी क्षमता। हम तो कभी कभी विचार करते हैं कि द्रौपदी का यदि केश वगैरह नहीं खींचा जाता तो युधिष्ठिर की इतनी बड़ी धर्म परायणता, इतना बड़ी सहनशीलता, इतनी बड़ी क्षमता, इतना ऊंचा सद्गुण हम लोगों को कैसे देखने में मिलता। आज पहली बार ये बात आई है। आज तक द्रौपदी के चीरहरण की निंदा ही निंदा हुई है। अपने को कैसे पता चलता है इतनी क्षमता है। जिसकी पत्नी भरी सभा में अपने भाइयों दुर्योधन आदि कुभाव वालों पितामह आदि पूज्य जनों के सामने और भी वहां लोग बैठे उनके सामने दुशासन साड़ी पकड़कर नग्न करने के लिए तैयार हो रहा है और राजा युधिष्ठिर चुप बैठे हैं। भीमसेन पर कितना प्रभाव पड़ा युधिष्ठिर का। यदि भीमसेन तो चाहता था कि एक बार युधिष्ठिर मुझे इतना कह दे कि भीमसेन तेरा बल कब काम आएगा, तो मैं इसी समय सबको चूर्ण कर डालूंगा। द्रौपदी ने भी आकर युधिष्ठिर से बहुत कड़ा प्रश्न किया, महाराज मेरे साथ ये बर्ताव आपकी आंखों के सामने हो रहा है, मैं हारी गई या नहीं हारी गई मैं इतना ही उत्तर चाहती हूं और आपसे कोई सहायता नहीं चाहती। महाराज युधिष्ठिर कितने सहिष्णु, कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने देखा कि मैं कुछ भी कहूंगा तो यह बबाल मच जाएगा। कितने शांत रहे, कितनी क्षमता है। जिस देश में राजा युधिष्ठिर, उस देश की प्रजा पर धर्म का प्रभाव होगा। जहां युधिष्ठिर के चरण पड़ेंगे वहां अकाल नहीं पड़ेगा, वहां गौओं की वृद्धि होगी, बीमारी नहीं होगी। भीष्म जी ने कुरुओं के सामने ये बात स्पष्टतः बताई, उस देश में राजा युधिष्ठिर होना चाहिए, धर्म ही धर्म होगा। किसी ने कह भी दिया यदि राजा युधिष्ठिर का इतना बड़ा धर्म का प्रभाव था तो फिर भरी सभा में इतना बड़ा अधर्म क्यों हुआ। तो भीष्म पितामह ने कहा कि वो भी एक धर्म था, युधिष्ठिर का सहन करना एक धर्म था। इतना अधर्म किया लेकिन द्रौपदी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, द्रौपदी का कुछ नहीं बिगड़ा। दुशासनी थका, द्रौपदी का क्या बिगड़ा। पांडव कौरवों की इस करतूत से कौरवों का पतन चालू हुआ, इसलिए राजा युधिष्ठिर उस समय धर्म को देखकर चुप थे। राजा विराट ने युधिष्ठिर के पासे के मार दी और भीमसेन बर्दाश्त नहीं करने वाला था तो वह खून निकल गया। लेकिन धन्य है द्रौपदी, उसी समय एक थाली लेकर आई और उस खून को जमीन पर नहीं दिए पटका। अर्जुन को मालूम हो कि हमारे महाराज युधिष्ठिर का खून जमीन पर गिर गया तो उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां देखने वालों को सबको मैं मार दूंगा। यदि खून गिरा है और किसी ने प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, उन देखने वालों को भी मार दूंगा, ये प्रतिज्ञा थी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को कहलवा दिया, शैरेंद्र उसे हिंजड़े से बोल देना कि वो अपना काम न छोड़े, वो तो वहां सिखा रहा था, कह देना अपना काम न छोड़े, इधर न आए। भीमसेन आया, युधिष्ठिर ने कहा कंकवत रसोई में जाओ, भोजन का समय है, रसोई कब बनाओगे, जाओ मेरी आज्ञा है, गीले लकड़े को कभी मत जलाना, सूखे लकड़े को जलाना, ये रसोई में काम मिले, गीले लकड़े को मत जलाना, जाओ जाओ। गीले लकड़े और सूखे लकड़े ये विराट हमारे लिए गीले लकड़े, इनको मत जलाना। इन्होंने अपने को आश्रय दिया है, भोजन दिया है, नौकरी दी है, एक वर्ष का अज्ञातवास इनके शरण में आने से हमारा निकल रहा है। जाओ सूखे लकड़े जलाना, जिनमें कोई धर्म नहीं, जिनमें पाप ही पाप है, सूखे हुए हैं उनको जलाना है, गीलों को मत जलाना। कितनी क्षमता है। राजा ने उसके पासों की मारी, युधिष्ठिर ने कोई अनिष्ट नहीं चाहा। द्रौपदी पर कैसी विपत्ति आई, उसी राजा का साड़ा कीचक द्रौपदी पर कुदृष्टि रखता है। भीमसेन ने कहा तुम उसको संगीतशाला में समय दे दो, द्रौपदी ने समय दे दिया, स्थान बता दिया और भीमसेन ने उसका कीचड़ निकाल दिया, कीचक का कीचड़ निकाल दिया। इसी प्रकार जयद्रथ ने जो द्रौपदी से बहुत बुरा व्यवहार किया, बिचारी जंगल से जल भरकर ला रही थी, जयद्रथ ने द्रौपदी को उठाकर अपने रथ में बैठाकर सबके सामने वो ले जाने लगा और द्रौपदी से बहुत डरा धमका करके उसके शील धर्म के नाश के लिए दबाव डाला। लेकिन पतिव्रता धर्म से द्रौपदी डिगी नहीं और उसका ये परिणाम हुआ कि जयद्रथ भरे युद्ध के अंदर बुरी मौत मारा गया। आजकल के लोग समझते नहीं है पतिव्रताओं के धर्म में कितना विशिष्ट, कितना वैशिष्ट है। पतिव्रता धर्म के पालन से स्त्री की जो शक्ति होती है मैं तो उसका वर्णन कर ही नहीं सकता हूं। पतिव्रत धर्म का अद्भुत पराक्रम, यमराज भी उसके सामने हार जाते हैं। सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रताप से अपने मरे हुए पति को जिला दिया, उसका भाग्य बदल दिया। पातिव्रत धर्म के सामने यमराज भी कुछ नहीं कह सकता। विधवा स्त्रियां हैं, उनको अपनी स्वतंत्रता से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। विधवाओं को तो एकदम वैराग्य रूप से रहना चाहिए। विधवा स्त्री वैराग्य पूर्वक भगवान के ध्यान में लगती है, देवता लोग भी उसके चरण रज की आकांक्षा करते हैं। आजकल घर में कोई दुर्भाग्य से विधवा हो जाते हैं तो उसको बहुत दुख देते हैं। मैं तो बहुत इस विषय में कहता हूं कि उस विधवा स्त्री को जो दुख देते हैं उनकी आगे भयंकर खबर ली जाएगी। विधवा स्त्री का तेज बड़ा विलक्षण है, वो ऐश आराम का त्याग करती है, भोग आदि को शमशान के समान अपवित्र और अग्राह्य समझती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली और पूर्ण संयम से रहने वाली विधवा स्त्री का दर्शन करना चाहिए। देवता के दर्शन से भी ज्यादा लाभ है। शोक है, बड़ा कष्ट है, आजकल विधवा स्त्रियों को दुख दिया जाता है, कितना घोर पाप है। बिचारी विधवाओं के रुपए खा जाते हैं, पति चला गया, उसकी संपत्ति पर उसके देवर जेठ कुदृष्टि रख करके खा जाते हैं रुपया, नियत खराब कर लेते हैं, वो बिचारी कष्ट पाती है। जो बिचारी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं उनको ताना मारती हैं कि देख तेरा भाग्य इतना खराब था, मेरा बेटा चला गया, कोई कि मेरा देवर चला गया, कोई कहता मेरा जेठ चला गया, तेरे कारण से गया। राम राम राम, क्यों ऐसे ताना मार करके घोर नरक की तैयारी करती हो। बिचारी विधवा है, परिवार वालों को बहुत सहानुभूति रखनी चाहिए। उसके वैधव्य के पालन में सबको सहयोग करना चाहिए, तन से मन से धन से सेवा करनी चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए कि भोग तो टट्टी पेशाब के समान है और स्वयं भी साधारण जीवन व्यतीत करे। घर में कोई विधवा हो तो दूसरी सुहागिनी स्त्रियों को अपना सुहाग के चिन्ह रखे, लेकिन तड़क भड़क की वेशभूषा, तड़क भड़क का पहनावा, तड़क भड़क के आभूषण ये नहीं पहनने चाहिए। भोगों को तो लात मार देनी चाहिए, भोग तो क्षण भंगुर है। जिस तरह पुत्र मर गया तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि आज पुत्र मरा है तो एक क्षण में ये भोग भी मरेंगे और इनके साथ मैं भी मरूंगा। ये मरने को भूलते हैं, ये मृत्यु इसीलिए तो बनाई है कि उससे हम वैराग्य को सीखें। तो पहले से ही वैराग्य को ले लें, जबरदस्ती का वैराग्य तो काम नहीं आएगा। छूटने से पार नहीं पड़ेगी, छोड़ने से पड़ेगी। जितने घर में और सदस्य हैं सबको विचार करना चाहिए कि अपने बैराग्य से जीवन बितावे। ये समझना चाहिए, इस प्रकार खूब जोर से साधन करना चाहिए। मन के अंदर एक दुख होना चाहिए, अरे पीछे का समय तो भोगों में बीत गया, अब बीत गया वो समय तो आएगा नहीं, कम से कम अब तो नहीं बीते, इतने पर तो कम से कम आवे ही, और पिछला समय जो चला गया उसकी पूर्ति के लिए जोर से भजन साधन में लगना चाहिए। हमारी तो सबसे यही प्रार्थना है कि उसी का जीवन धन्य है जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त कर भगवान की प्राप्ति करी। अपने स्वभाव को सुधारो, वाणी दोष, क्रिया दोष, स्वभाव दोष, आचरण दोष, इन सब से अपने को बचा करके चलो, अपना जीवन पवित्र करो, फिर आपको कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्त्री की तरफ कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, और यदि स्त्री पर नजर चली जाए, पहली बात तो नजर ही मत डालो, और नजर आ जाए तो उसको एकदम अपनी मां के समान समझो। उम्र में छोटी है तो अपनी बहन के समान समझो। जितने मनुष्य में अवगुण हैं उन सबसे बढ़कर अवगुण स्त्री की तरफ जो कुदृष्टि होती है, ये सबसे बड़ा अवगुण है, महान घातक दोष है। मनुष्यों को स्त्रियों में बिल्कुल परहेज करना चाहिए, ये दोष बड़ा भारी है। बड़े बड़े तपस्वी भी इस दोष से विचलित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक तो कर्णेन्द्रिय काम, इनकी आसक्ति छोड़ो, क्योंकि कान का विषय मान बड़ाई प्रतिष्ठा ये है। अपनी मान बड़ाई कानों से ही सुनोगे और इसका भोग होगा, क्या है मेरी खूब मान बड़ाई हो रही है, मेरी खूब प्रतिष्ठा हो रही है, लोग मेरा कितना गुणगान गाते हैं, ये कानों से ही तो सुनते हो, कोई प्रत्यक्ष में कोई परोक्ष में। तो ये तो कर्णेन्द्रिय से सावधान हो। हमने ऐसे ऐसे पुरुषों को देखा है कि मान बढ़ाई के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मनुष्य जब अपनी साधना की तीसरी भूमिका में पहुंचता है तब भी मान बढ़ाई उसको अप्रिय नहीं लगती है। जिस दिन मान बढ़ाई न हो उस दिन उनको चैन नहीं मिलती, अपमान हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। हम कहते हैं कि मान बढ़ाई की जगह अपमान होने लगे और मान बढ़ाई को आप अपमान समझने लगोगे, उस दिन आपका कर्णेन्द्रिय से संबंध विच्छेद हो जाएगा। आपके मन में मान बढ़ाई से ऐसे ग्लानी होनी चाहिए। अब कैसे कहें, जैसे किसी ने कोई हमारे पर विष्ठा फेंक दी, कोई हमारे पर विष्ठा फेंके, कितना बुरा लगता है, ऐसे मान बढ़ाई पूरी लगनी चाहिए। महान घृणास्पद दृष्टि होनी चाहिए। संसार में वैराग्य के समान कुछ भी नहीं है। और दूसरी इंद्रिय है स्पर्शेंद्रिय, बहुत सावधान रहे, बहुत बड़ी रुकावट है। इसीलिए मान बड़ाई के लिए कहा है, कंचन तजबो सहज है, सहज तिया को नेह, मान बड़ाई ईरखो दुर्लभ तजबो है। आपके अंदर कितने ही गुण हो, कितना ही आपके पास भोग पदार्थ रुपया मान बड़ाई आदर बहुत कुछ हो, शासन हो सत्ता हो, लेकिन यदि आप स्पर्शेंद्री के सामने स्त्री के सामने कच्चे हैं तो ये सारे गुण आपके धूल में मिल गए। विरक्त पुरुष के दर्शन से भी वैराग्य उत्पन्न होता है। मेरी उम्र 15 वर्ष की थी, हमारे चुरू में स्वामी मंगलनाथ जी महाराज आया करते थे। 15 वर्ष की उम्र में, वैसे मैं छोटी उम्र में ही अपनी दादी मां की अंगुली पकड़ते हुए संतों के सत्संग में जाता था। मेरी दादी मां मुझे ले जाती थी, मैं बच्चा था, छोटा ही था। मेरी दादी मां सत्संग में बैठती और हमारे जैसे छोटे 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 बच्चे वहां बोर खाने में लग जाते हैं। अब हमें क्या पता। फिर 15 वर्ष की अवस्था में स्वामी मंगलनाथ जी महाराज के दर्शन किए, उनकी बैठने की मुद्रा, उनके देखने की स्थिति, ऐसा मेरे पर प्रभाव पड़ा मैं आप लोगों के सामने कह नहीं सकता हूं। उस वैराग्य ने मुझे बहुत क्षमता दिलाई, बहुत काम किया। उनकी वैराग्य युक्त मुद्रा देखने से स्वतः ही वैराग्य पैदा हो जाता था। बड़े विरक्त थे। जैसी मैंने उनकी प्रशंसा सुनी थी, उसके बाद मैंने उनके जो दर्शन किए तो मेरे पर यह प्रभाव पड़ा कि जितनी इनकी प्रशंसा सुनते हैं उससे न जाने कितने आगे हैं। पर भाई हनुमान से वार्तालाप किया करते थे। अभी भी मंगलनाथ जी की जब स्मृति होती है तो मेरे अंदर वैराग्य और उपरामता बढ़ने लगती है। इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि महात्मा के दर्शन बहुत लाभदायक है। बड़े दुख की बात है, आजकल ऐसे पुरुषों के दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए हैं। अब है जैसे ही काम चला हो, इसलिए वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है। आप लोग जो कुछ मेरे अंदर समझते हो और मुझे भी यदि कुछ लाभ हुआ है तो स्वामी मंगलनाथ जी महाराज के दर्शन से ही हुआ है, महापुरुषों की कृपा से हुआ है। इसलिए आप सब से बड़े विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि संसार की तरफ से वैराग्य कर लो और ईश्वर की ओर प्रेम हो जाए, बस आपका जीवन सफल है। कीर्तन करना।